ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इसी स्थल पर गत वर्ष भगवान श्री वामन देव के जन्म की कथा हुई थी। इस बार कर्म की कथा होगी। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो व्यति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति श्रोतुः। स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे जन्म कर्म को तत्व से जानता है, वह यह देह छोड़ने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं लेता, वो मेरे पास आ जाता है। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम् इस सत्र में हम लोग श्री भगवान के दिव्य कर्म की चर्चा करेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने के लिए बड़े ही प्रेम से उत्सुकता से एकत्रित हुए हैं। आपके इस प्रेम को देखकर हमें स्मरण आ रहा है श्रीमद् भागवतम का वह श्लोक जिसमें सूत गोस्वामी कहते हैं, अथेह धन्या भगवंत मिथम जदवासुदेवे खिलोकनाथ कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भूतम नजत्र भूय परिवर्त उग्रह। हे ऋषियों, आप लोग धन्य हैं और महाभाग्यवान है जो भगवान वासुदेव में कृष्ण में इस प्रकार प्रेम कर रहे हैं। उनके विषय में सुनने के लिए आप जहां तहां से एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का यह प्रभाव है कि फिर उस भक्ति के प्रभाव से व्यक्ति इस घोर संसार में नहीं जन्म लेता है, वह भगवान के पास चला जाता है। नजत्र भूया परिवर्त उग्रह। श्री श्री राधा दास बिहारी जी और श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरणों में बैठकर हम लोग भगवान वामन देव के कीर्ति का आस्वादन करेंगे और श्री बलि महाराज भगवान से कितना प्रेम करते हैं इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। ये सब कथाएं तो पूर्व से ही आचार्यों ने कहा है, जैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से वर्णन किए हैं। कोई नई बात नहीं कहनी है, पर उन्हीं की बातों को और स्पष्ट हिंदी भाषा में समझने का प्रयास किया जाएगा। इस आयोजन को यह रूप देने वाले श्री जगजीवन दास प्रभु जी को मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूं और श्री राधा गिरधारी जी से कामना करता हूं कि उनका प्रेम उनका स्नेह भगवान से निरंतर बढ़ता रहे। और भी जिन भक्तों ने इस आयोजन में इस यज्ञ में सहयोग किया है उन सबको भी धन्यवाद। इसके साथ ही साथ श्री राधा गिरधारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वे इस तरह का आयोजन करते हैं। मूल तो वही है और आप सभी श्रोता भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम करके मैं यह श्रीमद् भागवत प्रारंभ कर रहा हूं। कथा यहां तक हो चुकी थी कि श्री भगवान वामन देव के रूप में जन्म लिए और बलि महाराज के यज्ञ में गए। तो जन्म की कथा तो हुई थी, बलि महाराज के यज्ञ में जाने की कथा थोड़ी ही हुई थी। तो भगवान ने बलि महाराज के यज्ञ में जा रहे हैं, यहां से हम प्रारंभ करते हैं। स्कंध अष्टम अध्याय 8 श्लोक 20, श्लोक 20 से प्रारंभ करेंगे। श्रुत्वा स्वमेधैर्जजमान मूर्जितम्, बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिल सार संभृतो, भारेण गाम सन्नमयन् पदे पदे। यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं पहले श्लोक का अर्थ करते। श्रुत्वा सुनकर, अश्वमेधैः अनेक अश्वमेध यज्ञों द्वारा, जजमान को ऊर्जितम्, बहुत अधिक तेजस्वी बलिम बलि को, भृगूणाम शुक्राचार्य आदि भृगुवंशियों के द्वारा, उपकल्पित ही जो यज्ञ संपादित किए गए थे उन यज्ञों द्वारा, ततः तब जगाम गए तत्र यज्ञ में, यज्ञस्थल में, अखिल सार संभृतः संपूर्ण बल से युक्त, संपूर्ण बल से संपूर्ण, भारेण भार से, गौरव से, गाम पृथ्वी को, सन नमयन झुकाते हुए, पदे पदे पद पद में। तो श्री भगवान माता अदिति के गर्भ से जन्म लिए और जन्म लेने के बाद तुरंत ही बटु वामन हो गए। वे चार भुजा से जन्म लिए अपने स्वरूप में, विष्णु स्वरूप में, और माता अदिति के सामने और श्री प्रजापति कश्यप जी के देखते देखते, दोनों के देखते देखते छोटा सा बौना ब्राह्मण हो गए। उसी शरीर से शरीर परिवर्तन नहीं किए, संपश्यतो पित्रो। सुखदेव जी कहते हैं कि माता पिता के देखते देखते बटु बामन हो गए। इसके बाद उनका संस्कार किया गया और तुरंत ही उपनयन संस्कार हुआ, वो बड़े हो गए। भगवान ने गर्भ से जन्म नहीं लिए वामन भगवान, भगवान विष्णु जन्म लिए और देखते देखते एक छोटा सा ब्राह्मण बच्चा हो गए और तुरंत बड़े हो गए, जिनका उपनयन संस्कार हुआ। तो यज्ञ हुआ, उसमें किसने क्या क्या दिया वामन देव को, इसका वर्णन है। तो उस यज्ञ में स्वाभाविक ही बलि महाराज के विषय में चर्चा होने लगी। बलि महाराज का यश संपूर्ण विश्व में फैला हुआ था। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि भृगुणा उपकल्पित ही अश्वमेधै जजमानं बलिम ऊर्जितं श्रुत्वा अखिल भार संभृत भारेण पदे पदे गाम नमयन तत्र जगान। भगवान सुने, भगवान कथा सुन रहे थे, उपनयन संस्कार हुआ है तो धर्म है कथा सुनना। एक महान राजर्षि की कथा हो रही थी, बलि महाराज की। उस समय बलि महाराज थे और जग कर रहे थे। क्या सुने? ये सुने कि भृगुनाम, भृगुनाम का अर्थ है ये भृगु भी, भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए गए और बलि महाराज यजमान थे, वे यजन कर रहे थे भगवान का। उस यज्ञ में भगवान विष्णु का ही यजन हो रहा था, भगवान का ही यजन हो रहा था, उन्हीं के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। 99 अश्वमेध यज्ञ तो पहले किए जा चुके थे, 100वां अश्वमेध यज्ञ अब पूरा होने की स्थिति में था, लगभग पूरा ही हो चुका था, थोड़ा सा बाकी था। इन यज्ञों के द्वारा जजमानम ऊर्जितम बलिम, बलि का जस बहुत बढ़ा था। ऊर्जा का अर्थ आप समझते हैं, ऊर्जा का अर्थ तेज शक्ति, और ऊर्जितम बहुत अधिक तेजस्वी, बहुत अधिक प्रताप और बल बढ़ा हुआ था बलि महाराज का। ये श्री भगवान ब्रह्मर्षियों के मुख से कथा सुन रहे थे। तो कथा सुनते सुनते खास करके भी सुने कि यज्ञ में बहुत दान देते हैं बलि महाराज, बहुत दान देते हैं। ये सुन करके भगवान की इच्छा हो गई, उस ब्राह्मण की इच्छा हो गई कि हम भी महाराज बलि से कुछ दान मांगे। इसी के लिए अवतार ही हुआ था, वो पहले से ही नेटवर्क बना चुके थे भगवान। कोई ऐसा नहीं था कि अकस्मात सुन करके दान मांगने की इच्छा हो गई। तो चले चले त्रिलोक की बलि चलने, तो चल रहे हैं। तो उस समय श्री सुखदेव को स्वयं भगवान के विषय में कहते हैं, अखिल सार संभृत, श्री भगवान अखिल पूर्ण सार बल से संभृत, संपूर्ण थे, पूर्ण बल से पूरा भरे थे, संभृत मतलब समस्त तेज आदि को धारण किए थे भगवान, और बल का आविष्कार किए थे, और जो चल रहे थे पृथ्वी पर पदे पदे, उनका चरण कमल जब चल रहा था, पैदल ही आ रहे थे बलि महाराज के यज्ञ में, और कोई नहीं था, अकेले चले भीख मांगने के लिए। मानो भगवान यह अपने समाज में सिद्ध कर रहे थे कि भाई हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण को स्वाभाविक अपनी जीविका राजाओं से मांगनी चाहिए, तो इसलिए जा रहे थे। चलते हुए भगवान के चरण चिन्ह उभर रहे होंगे, और इसके साथ ही साथ एक एक पग पर यह पृथ्वी झुक रही थी। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा है कि ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे तो उनके पैर के भार से पृथ्वी डगमग करने लगी, वैसे जैसे भारी गजराज के नौका रूढ़ होने पर नौका डगमग दाएं बाएं घूमने लगती। तो श्री भगवान की चरण कमल का स्पर्श पा करके पृथ्वी पग पग में झुक रही थी, प्रणाम कर रही थी। गाम सम नमयन पदे पदे, सम नमयन सम्यक नमयन, जहां भगवान पैर रखते थे तो पृथ्वी झुकती थी, केवल चरण कमल के नीचे का भाग ही धस नहीं जाता था, वो तो किसी का भी धस जाएगा कीचड़ में अगर चले तो। यह पृथ्वी झुक रही थी पूरा, भगवान को प्रणाम कर रहे थे, भगवान के चरण कमल का संस्पर्श पा करके यह पृथ्वी धन्य हो रही थी। तो भगवान चले, छलय अस्य विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनख नीर जनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश। तो श्री भगवान यज्ञ में चल रहे हैं। कहां यज्ञ हो रहा था सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तन तम नर्मदायास्तट उत्तरे बले यारित्विजस्ते भृगु कच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः कृतुत्तमम् व्यचक्ष तारादुदितम् यथारथिम्। स्वर्गीय नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर एक भृगु कच्छ नामक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में भृगुवंशी शुक्राचार्य आदि ब्राह्मण इस यज्ञ का प्रवर्तन कर रहे थे। ये कहते ये बले ऋत्विज हत्ते जो बलि महाराज के ऋत्विक थे जिनमें प्रधान ऋत्विक गुरु महाराज श्री शुक्राचार्य जी हैं और इसके साथ और ब्राह्मण। तो ये प्रवर्तयंत भृगव कृतुत्तमम क्रतु उत्तमम एक श्रेष्ठ यज्ञ का संपादन कर रहे थे। जितना भी यज्ञ किए थे वे सब श्रेष्ठ थे, लेकिन उसमें भी सौवा यज्ञ और दिव्याति दिव्य था। जिस यज्ञ में यज्ञ फल लेने के लिए स्वयं भगवान आए और हाथ पसार करके मांगे, तो वह यज्ञ कृतुत्तमम समस्त यज्ञों में उत्तमम क्रतुषु उत्तमम कृतुत्तमम समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ था। तो उस यज्ञ में भगवान आए तो उन ऋत्विजों ने देखा, सर्वप्रथम उन ब्राह्मणों ने जो स्वयं ही बहुत तेजस्वी ब्राह्मण थे, ऐसे देखा कि जथा रबिन आरात उदितम, उन्हें ऐसा लगा कि साक्षात भगवान सूर्य ही निकट में उग रहे हैं। आरात उदितम जथा रबिन, हम लोग देखते हैं भगवान सूर्य को उगते हुए प्रतिदिन, उगते हैं तो लाल रहते हैं और दूर से उतना प्रकाश उनका नहीं होता है, कुछ धीमा प्रकाश रहता है उगते हुए, लेकिन भगवान का तेज भगवान का प्रकाश ऐसा था कि ऋत्विजों ने देखा कि लगा जैसे सूर्य आरात उदितम, सूर्य बिल्कुल निकट में उग रहा। यह भगवान का सौंदर्य और तेज। सूर्य सबसे प्रकाशित वस्तु है इस संसार में, प्रकाशशील वस्तु, ये प्रतिदिन का अनुभव है। और ये जो उदाहरण दिया जा रहा है ऐसा नहीं कि कोई काव्य रचा जा रहा है, कोई कविता की जा रही है। तेजस तेजस्वी नाम हम, भगवान कहते हैं मैं समस्त तेजस्वियों का तेज हूं। ये भी गीता में कहते हैं कि रसो हम अपसु कौन तया प्रभास्मी शशि सूर्यदेव, हे कुंती नंदन मैं जल में रस हूं और शशि सूर्य में जो प्रभा है तेज है वो मैं हूं। चंद्रमा में और सूर्य में जो प्रकाश है वो भगवान का ही प्रकाश है, थोड़ा सा नाम मात्र। वही भगवान जब आ रहे हैं यज्ञशाला में तो लगा कि सूर्य निकट में उग रहे हैं, इतना तेज था भगवान में। व्यचक्षत देखा ब्राह्मणों ने ऋत्विजों ने कि साक्षात सूर्य जैसे कोई व्यक्ति आ रहे हैं। ऐसा नहीं मान ले कि सूर्य उग रहे हैं, पहले तो दूर से भगवान सूर्य जैसे ही दिखाई दे, सूर्य उग रहे हैं, हाथ पैर आदि नहीं दिखाई दिया, लेकिन निकट आने लगे तब भगवान के अंग बिल्कुल साफ साफ दिखने लगे। तो यज्ञ हो रहा था नर्मदा नदी के किनारे, यह नर्मदा जी स्वर्ग में है। तो जब भगवान निकट आ रहे थे तब आपस में ही लोग बात करने लगे ऋत्विज गण। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि त्वरित्विजो जजमान सदस्या हत त्विशो बामन तेज सानृप। हे महाराज परीक्षित, जब भगवान आ रहे थे निकट तो उनके तेज से जितने भी जजमान थे, जजमान बलि महाराज और ऋत्विक जितने थे और सदस्य उस यज्ञ में जो भी भाग लेने आए थे, वे सब लोग भगवान वामन देव के तेज से हतोत्तरी हो गए। उनका तेज फीका पड़ गया, जैसे सूर्य के उगने पर दीपक का तेज फीका हो जाता है, या बिजली का बल्ब, इन सब का प्रकाश दिन में फीका हो जाता है सूर्य के उगते। इस प्रकार से सबका तेज फीका होगा। फीका का मतलब यह नहीं हुआ कि उनका प्रकाश कम होने लगा, नहीं, इतने ही पावर में यह बल्ब जल है, लेकिन सूर्य के उगने पर इसकी छटा है, इसकी प्रभा नहीं दिखाई देती, शोभा नष्ट हो जाती, प्रकाश उतना ही रहता है। ब्राह्मणों में, बलि महाराज में और उस जग में पधारे हुए समस्त जनता का तेज भगवान वामन देव के तेज के आगे फीका पड़ गया, हतोत्तरी में। आपस में लोग यही बात करने लगे, सूर्य किला या उतवा विभावसु सनत कुमारोथ दिदृक्षया क्रतो। सब लोग आपस में कहने लगे, दिदृक्षया क्रतो, यज्ञ के दर्शन की इच्छा से लगता है कि भगवान सूर्य जा रहे हैं, इतना तेज भगवान में था। सबको यही हो रहा है कि भगवान सूर्य जा रहे हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में जलन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे सूर्य भगवान तीखी किरणों से जलाते हैं लोगों को, ऐसा प्रकाश नहीं था। तो फिर सोचने लगे, पहले तो सोचे सूर्य किलो आयाति उतवा विभाव, सूर्य आ रहे हैं कि अग्निदेव आ रहे हैं, तो दोनों के प्रकाश में तेज होता है, आंच होती है। तब अंत में कहते हैं लगता है सनत कुमार दीर्घा को, तो सनत कुमार आ रहे हैं, क्योंकि शरीर से ताप नहीं निकल रहा है, केवल तेज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो भगवान ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनकादिक, जिनको कभी कभी एक ही नाम से कह दिया जाता है, सनत कुमार का मतलब चारों भाई हुआ, पर उसमें से एक आ रहे होंगे किसी काम से ऐसा आपस में बातचीत लोग करने लगे, सदस्य और यहां तक बलि महाराज भी और ऋत्विक भी, सभी आपस में कौन आ रहे हैं, लगता है कि सूर्य भगवान आ रहे हैं यज्ञ देखने के लिए, तो साक्षात अग्निदेव आ रहे हैं यज्ञ देखने के लिए, अथवा श्री सनत कुमार जी आ रहे हैं, आपस में बात कर रहे थे। इत्थम स्वशिष्येषु भृगुस्व अनेकधा वितर्क मानव भगवान सबामन छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम विवेश विव्रत हयमेध वाटम। जब इस प्रकार से बात लोग कर ही रहे थे तो भगवान तो आ ही रहे थे, आपस में भृगुसु सशिष्यसु, भृगुवंशी ब्राह्मण आपस में चर्चा कर रहे थे, इस तरह से विकल्प वैकल्पिक प्रवचन कर रहे थे आपस में, कौन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तब तक तो भगवान हयमेध वाटम, हयमेध अश्वमेध वाटम मंडपम, यज्ञ मंडप में प्रवेश किए, बिल्कुल निकट आ गए। वह यज्ञ मंडप बहुत विशाल था, बहुत दूर में फैला था, सभासद आदि सब उसमें बैठते थे, जनता बैठती थी, तो इसलिए हयमेध वाटम, वाटम यज्ञ मंडप का, यज्ञ मंडप में श्री भगवान प्रवेश किए, विवेश आए। कैसे भगवान? सबामन, छोटे ब्राह्मण के रूप में जो प्रकट हुए हैं, तो वे भगवान आए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि भगवान माता पिता के देखते देखते वामन बन गए, तो वामन किस लिए बने और वह कार्य बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इसलिए वामन बने थे। बटुर जदर्थम वभुव तदा, जिस कारण से बटुर बने वो सब बता रहे। तो भृगुवंशी ब्राह्मण आपस में जब विचार करे तो कौन आ रहे हैं, तब तक देखे सब वामन, ये वामन भगवान, छत्रम सदंडम, एक छत्ता ओढ़े हुए आए, सदंडम जिसमें दंड लगा था, छत्र था सदंडम, छत्रम सदंडम, सजलम कमंडलम, और दाहिने हाथ में कमंडल लिए थे, अथवा जिस हाथ में भी कमंडल लिए, दाहिने हाथ में छाता लिए होंगे तो बाएं हाथ में कमंडल लिए होंगे, अथवा छाता पकड़े होंगे उसी में कमंडल भी लिए होंगे, एक हाथ से जप कर रहे होंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। भगवान एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए हैं, बने हुए हैं, तो ये स्वाभाविक है कि छत्र और कमंडल लिए हैं, इसके साथ साथ जप झोली भी लिए होंगे। भोजपुरी में गाते हैं कि हथवा में लिहले प्रभु जी भागवत पोथी, लाल लंगोटी लाल काछनी लाले रंग के धोती, हथवा में लिहले प्रभु जी भागवत पोथी। एक हाथ में भागवत लिए थे और एक में कमंडल और छत्र दोनों पकड़े थे। कमंडल कैसा था? सजलम, जल से भरा हुआ कमंडल, जल के साथ कहीं भी जल की कोई आवश्यकता पड़ जाती है, जल लेकर के चलना है, ब्राह्मणों का सन्यासियों का कार्य है। दंड कमांडर, इसको आज के युग मतलब ढंड कमांडर, क्या ढंड कमांडर की। लेकिन पवित्र रहने के लिए जल आवश्यक है, और सूर्य के ताप से बचने के लिए छत्र आवश्यक है। भगवान इस तरह से आए, प्रवेश किए। सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं, मौंज्या मेखलया वीतम उपवीता जिनोतरम। भगवान म्यूजिक, मौंज्या मेखलया, मेखला कमर में पहनने वाली रस्सी होती है, तो मूंज की रस्सी पहने हैं। मूंज एक घास है, तृण है, और उसकी रस्सी भगवान पहने हैं। मौंज्या मेखलया वीतम उपवीता जिनोत्तरम, और अजिन काले मृग चर्म को धारण किए हैं, वो उसको कैसे धारण किए हैं? उपवीत की तरह, जनेऊ की तरह, जनेऊ तो लगाए हैं लेकिन काले मृग चर्म को ऐसे धारण किए हैं, यहां से ऐसे। अजिन ही उपवीत की तरह, उपवीत अजिनोत्तरम, अजिन धारण किए हैं, वही उत्तरम उत्तरीय की वस्त्र की तरह भगवान ऐसे धारण किए। और जटिलम वामनम विप्रम माया मानवकम हरिण, सब सदस्यों ने, ऋतिजों ने, बलि महाराज ने देखा कि मूंज की मेखला पहने हैं और कृष्ण मृग शर्म को ही उत्तरीय के रूप में धारण किए हैं, तथा जटिलम जटा जुक्तम, उन्होंने देखा जटा है, बहुत सुंदर जटा है, जटिलम केश था, उसको भगवान संवारे नहीं थे, जिस केश को नहीं संवारा जाए तो अपने आप ही जटिलम हो गया, वो जटा बन जाती है, तो केश का संस्कार नहीं किया जाता है, चलो जटा बन जाते। तो जटिलम वामनम छोटा बच्चा, छोटा वामन, विप्रम ब्राह्मण, माया माणवकम हरि, लोगों ने देखा। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, सब लोग नहीं समझे, ये माया से बावना बने हुए माणवकम, माणवकम का अर्थ होता है बावना, हाथ पैर छोटे छोटे हों सब, हरि हरि आए, सबके मन को हर रहे थे अथवा बलि महाराज से सारा धन हरने आए हैं, इसलिए सुखदेव को संहारी कहा। माया से, कपट से या अपनी चिन्मय शक्ति से जो वामन वेश धारण किए हुए हैं, ऐसे हरि ने को देखा उन लोगों ने प्रवेश करते हैं। प्रविष्टम वीक्ष भृगवाशिष्यस्ते सहाग्नि भी प्रत्यगृहणम समुत्थाय संक्षिप्तास्तस तेजसा। प्रविष्ट देख करके जो ब्राह्मण थे उस यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ, अपने शिष्यों के साथ और अपने अग्नियों के साथ जो यज्ञ में सहायता करते थे सबके साथ वे खड़े हो गए। भगवान को यज्ञ मंडप में प्रवेश करते देख कर सब खड़े हो गए। भृगवा सशिष्य, सशिष्य का थे बलि महाराज के साथ, बलि महाराज उनके शिष्य हैं, तो शुक्राचार्य खड़े हुए और सब ब्राह्मण खड़े हुए, बलि महाराज खड़े हुए और भी ब्राह्मण सब खड़े हुए। प्रत्यग्रहण भगवान का स्वागत किए, उन्हें रिसीव किए। समुत्थाय सम्यक उत्थाय, खूब अच्छे ढंग से खड़े हो गए, खड़े होकर के और कुछ दूर गए जाकर के अगवानी किए। प्रत्यग्रहण का अर्थ ये है अगवानी किए और लाए। संक्षिप्त तस्य तेजसा, पुनः कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि तस्य तेजसा, भगवान के तेज से सब अभिभूत हो गए थे। संक्षिप्त, संक्षिप्त का अर्थ छीन लिए जाना, जिनका तेज पूरा पूरा छीन लिया गया था, भगवान के तेज का वर्णन किया जा रहा है। तो भगवान के तेज से सबका तेज छीन लिया गया था, सब उसे अभिभूत थे और भगवान का स्वागत किए। बलि महाराज किस प्रकार भगवान को रिसीव कर रहे हैं इसका वर्णन करते हैं। जजमान प्रमुदित दर्शनीय मनोरम श्रूपान रूपायम तस्मा आसन महर। सब खड़े हो गए लाए, तब इसके बाद बलि महाराज भगवान को आसन दिए। तस्मय आसनम आहर, सबसे श्रेष्ठ आसन वहां था, उसको बलि महाराज उठवाए अपने सेवकों द्वारा और स्वयं भी लगे और आसन लाए भगवान के लिए। भगवान कैसे हैं? दर्शनीय, देखने ही योग्य, आंखों के लिए परम प्रिय, मनोरम, आंख के लिए तो वे परम प्रिय है ही, तो दर्शनीय कहेंगे। इसके साथ ही साथ मनोरम, मन रम रहा था, मन उन्हीं में आविष्ट हो रहा था सबका। दर्शनीय चाहे मनोरम, दोनों के द्वारा भगवान के अद्भुत सौंदर्य को वर्णन किया जा रहा है। रूपान रूपा यवयम, रूप के अनुरूप अंग थे सब, रूप के अनुरूप शरीरानुरूप, रूप के अनुरूप अवयव थे भगवान के सभी अंग, बहुत सुंदर लगते थे। रूप के अनुरूप अर्थात बटु बामन बने थे तो उसके अनुरूप ही सारे अंग भगवान के थे। उनको देख करके सबने स्वागत किया, बलि महाराज ने आसन दिया। स्वागते नाभिनंद्याथ पाद भगवतो बलि अवनिर्ज्यार्चयामास मुक्त संग मनोरम। बलि महाराज भगवान श्री कृष्ण के, श्री बामन देव के पादौ दोनों चरणों को अवनिज्य प्रक्षालन किए, चरणों का प्रक्षालन किए, आसन पर पहले बैठाए, आसन पर बैठा करके भगवान के चरणों को धोए। इस समय उनकी पत्नी नहीं थी साथ में, अन्यथा उसका भी वर्णन सुखदेव जी करते कि वो भी साथ में धो रही है। दान देने के बाद जब भगवान के चरणों को धोना हुआ तो बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली भी साथ में धो रही थी। ये वर्णन यहां वर्णन नहीं, यहां यज्ञ मंडप में भगवान पधारे हैं तो बलि महाराज स्वयं धो रहे हैं, पहले तो स्वागत किए, स्वागतेन अभिनंदयात, स्वागत यह शब्द कह करके श्री बलि महाराज भगवान के आने का अभिनंदन किए। और इसके बाद भगवत पादौ अवनिज्य, भगवान के चरण कमलों को धोए, मुक्त संग मनोरमम, भगवान कैसे हैं, मुक्त संग मनोरमम, एक अलग से कर्म का वर्णन कर रहे हैं, कर्म है भगवान, और दोनों चरण कमल को धोए, दोनों चरण कमल को धो करके फिर मुक्त संग मनोरमम को अर्चयामास, भगवान की पूजा की, कथम भूतम भगवंतम मुक्त संग मनोरमम, मुक्त सब तरह से अनाशक्त परमहंस, मुनियों के लिए भी जो मनोरम है, मुनियों का मन भी जिनमें रम जाता है, ऐसे परम सुंदर भगवान, जो मुनि बिल्कुल विरक्त हैं, मुक्त हैं, संसार के किसी भी रूप में उनका मन नहीं अटक सकता है, किसी की तरफ देखते भी नहीं है, ऐसे परमहंसों का, आत्मा राम मुनियों का मन भी भगवान में रम जाता है, अर्थात उनके मन को भगवान स्वानुरागी बना देते हैं, उनके अनुराग में जिनका मन विह्वल हो जाता है, इतने सुंदर है प्रभु, ऐसे सुंदर है भगवान की पूजा करने लगे। तो इसका अर्थ है कि जब श्री बलि महाराज भगवान को माला पहना रहे थे या चावल डुला रहे थे, पूजा कर रहे थे, तिलक कर रहे थे, तो उस समय भगवान के अंगों को वो एक टक देख रहे थे। भगवान इतने सुंदर है ही, आत्मा राम गणाकर स्वरूप है उनका, मुक्त संग मनोरम, जिनका मन सदा मुक्त है, जो सब प्रकार के आसक्ति से मुक्त है, ऐसे परमहंस गण भी भगवान के रूप में मग्न हो जाते हैं, भगवान उन्हें फंसा लेते हैं अपने रूप में। एक कथा है रामचरितमानस में, भगवान श्री राम जब जनकपुर गए, उन्हें पता लगा कि विश्वामित्र मुनि आए हैं अपने दो शिष्यों के साथ, और उनके तेज और सौंदर्य की चर्चा सभी लोग कर रहे थे। तब जनक महाराज दर्शन करने गए विश्वामित्र मुनि का, तो जब वे गए वहां और देखे श्रीराम को, भगवान को, लक्ष्मण को, राम को देखते हैं भयव विदेह विदेह विषय, उनका तो नाम ही है विदेह, देह से अतीत रहते हैं, लेकिन राम को देखने के बाद तो विशेष रूप से विदेह हो गए। कहाँ है चादर, रास मंडल पर रखे थे बांध मछलों को पत्रों से, वो है ना हमारे चादर लाए सिर पर लपेटी, भय विदेह विदेह विषेक, भगवान श्री राम के सौंदर्य को देख करके महाराज दशरथ, अरे महाराज जनक के शरीर में पुलक होने लगा, आंखों में आंसू आने लगा, और एक टक पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाभ, बार बार भगवान श्री राम को देख रहे थे। यहां श्रील सुखदेव गोस्वामी यह वर्णन करते हैं कि जब श्री बलि महाराज भगवान की पूजा कर रहे थे तो बहुत ही गहराई से प्रेम से भगवान के अंगों का निरीक्षण कर रहे थे, इतना सुंदर, तो उसी का वर्णन करते हुए श्रील सुखदेव जी कहते हैं कि मुक्त संग मनोरम, जो सब प्रकार की आसक्ति से शून्य है, ऐसे परमहंस मुनियों का मन भी भगवान में रम जाता। इससे यह शिक्षा मिलती है कि वास्तव में भगवान सुंदरता के खान हैं, भगवान कभी निराकार नहीं है, संसारिक रूप का निगेशन करने के लिए, इसको निरस्त करने के लिए शास्त्र कहता है कि भगवान का आकार नहीं है, तो आकार का मतलब ऐसा प्राकृत आकार नहीं है, तो भगवान का अपना रूप तो है ही। मच्छरों को पत्रों से भगवान परम सुंदर हैं, परम तेजस्वी हैं, तेज का वर्णन आपने सुना कि निकट में जैसे सूर्य उगे ऐसा तेज भगवान में था, और सौंदर्य कैसा है कि मुक्त परमहंस मुनियों का मन भी उनके अनुराग में पड़ जाता है, वे उसी को देखना चाहते हैं, रात दिन देखते रहते हैं, कभी तृप्त नहीं होते, मुक्त संग मनोरम। श्री बलि महाराज ने भगवान का पूजन किया और चरण कमल जो धोए तो चरण कमल के जल को अपने सिर पर रखे, अपने केश कलाप को पूरा पूरा भिंगो लिए, स्नान जैसे कर रहे थे। तत्पाद शौचम जन कल्मषापहम साधर्म विमूर्ध्य दधा सुमंगलम जद्देव देवो गिरिशश्चंद्र मौलिः दधार मूर्ध्ना परया च भक्त्या। बलि महाराज श्री भगवान के जुगल चरण कमल को धोए और तत्पाद शौचम उनके चरण कमल के जल को जो समस्त जनता के समस्त जीवों के पाप का विनाशक है ऐसे जल को सह मूर्धनि व्यधात अदधा अपने सिर पर रख, अपने सिर पर डाले। क्यों? क्योंकि श्री बलि महाराज धर्मवीत धर्मवेत्ता है, भागवत धर्म के 12 ज्ञाताओं में बलि महाराज एक है। स्वयंभूर नारद शंभूर कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयाश कीर्वयम। भगवान जमराज जी कहते हैं कि हम 12 लोग भागवत धर्म को जानते हैं। यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी इनको धर्मवीत कह रहे, धर्म वास्तव में ज्ञानी होगा, भगवान का भक्त होगा, धर्म का तत्व जानता है, तो वह भगवान के चरण कमल के जल का आदर अवश्य करेगा। इस पृथ्वी पर भगवान के चरणों का जल सुलभ है गंगा जी के रूप में, और प्रतिदिन सुलभ होता है, भगवान के श्री विग्रह का चरण धोया जाता है या उनकी सेवा में जिस जल का प्रयोग किया जाता है स्नान आदि की भावना से, उसको भी चरणदक कहते चरणामृत। और उसके विषय में शास्त्र कहता है कि अकाल मृत्यु हरणम जरा व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णु पादोदकम भगवान विष्णु का चरण उदक चरण जल अकाल मृत्यु हरण, अकाल मृत्यु का हरण कर लेता है, लंबी आयु होती है, लोग इधर उधर खाते पीते फिरते हैं बिना मतलब के, भगवान के चरण कमल के जल को रोज पीना चाहिए, अकाल मृत्यु नहीं होगी, जरा व्याधि विनाशन बुढ़ापा के दुख का विनाश करता है चरण कमल का जल, और व्याधि विनाशन और अनेक रोगों को भी दूर करता है। आजकल दुनिया भर में लोग पड़े हुए हैं कि लोगों के रोग का शमन किया जाए, लोग का शमन रोग नष्ट किया जाए सब, और इसके लिए बहुत व्यापक ढंग से दवाइयां बनाई जाती हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापार होते हैं दवाइयों का, सब ठीक है, करना चाहिए, लेकिन जो सबसे अमोघ औषधि बताई जा रही है रोग मिटाने के लिए, भगवान का चरणोदक पीना है। और यह बात हम लोग केवल अंदाज से नहीं कह रहे हैं, अनुमान से नहीं, जीवन में व्यवहारिक रूप से हम लोगों ने भगवान के चरणोदक चरणामृत के प्रभाव को देखा है करा करके। एक व्यक्ति थे, उनको एक डॉक्टर ने बताया, एक कई डॉक्टरों ने बताया कि आप अब 3 महीना केवल जी सकते हैं मैक्सिमम, 3 महीना। ये बिल्कुल सत्य घटना है, सब जगह से जवाब हो गया था, 3 महीने से ज्यादा नहीं जीएंगे। तो न्यू जर्सी की घटना है अमेरिका में, हमारे पास वो बेचारे बहुत निराश होकर के, भारतीय हैं वो, बहुत ऐसी बात कहने लगे, तो हमने यही कह दिया भगवान के चरणोदक की बात कि अकाल मृत्यु हरणम जरा व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। आप इसको पीजिए प्रतिदिन भगवान के मंदिर में आकर के और चरणोदक लीजिए। तो वे वही किए और भगवान की कृपा से ये 3 साल पहले की बात है, 3 महीना तक वे केवल जीने वाले थे और 3 वर्ष पार कर गए। देखिए अकाल मृत्यु हरणम जरा व्याधि विनाशनम, व्याधि का नाश। यह जो प्रैक्टिकल व्यवहार में की गई बात है वो मैं कह रहा हूं। यहां पर श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के चरणोदक के विषय में कह रहे हैं कि धर्म के वेत्ता धर्मज्ञ श्री बलि महाराज अपने सिर पर उस जल को रखे और चस से पिए भी, यह समझना चाहिए। उस जल के विषय में 2 विशेषण दिया जा रहा है भगवान के चरणोदक के विषय में, जल कल्म सापहम और सुमंगलम। जो भी दुख है, दरिद्रता है, शोक है, अभाव, पाप, उसका तो हरण कर ही लेता है, विनाश करता है, और सुमंगलम जीवन में मंगलदायक है, सौभाग्य देता है, वो भाग्य को संवारता है। सामान्य चीज नहीं है भगवान के चरणोदक को पीना। आपने देखा होगा मंदिरों में व्यवस्था रहती है, भगवान का चरणोदक रहता है, कोई भक्त जाता है प्रणाम करता है, प्रणाम करके फिर चरणोदक लेता है। यह सौभाग्य, यह परम औषधि है रोग के लिए भी और पाप विनाश करने के लिए भी। सुमंगल जनकल में सापहम, एक विशेषण है, दुख दारिद्र अपराध सबका विनाशक है, पाप का विनाशक, कलमस का विनाशक, और सुमंगलम जीवन में जो भी चाहिए, सौभाग्य, धन, स्वास्थ्य, लंबी आयु, जस और स्वर्ग और अंततः भगवान का धाम, ये सब देने वाला है। ऐसे जल को, भगवान के चरणोदक को बलि महाराज मूर्धनी और दधात सिर पर धारण किए। इस विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी को घटना याद आ गई कि भगवान के चरण कमल के जल का आदर करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है भगवान शिव। उन्होंने अपने जटा में भगवान के चरणोदक को धारण किया है, गंगा जी को, इसलिए उन्हें गंगाधर कहते हैं। जब देव देव गिरिशश चंद्र मौली दधार मूर्धना पर्याच भक्त। 3 विशेषण दे रहे हैं भगवान शिव के लिए सुखदेव गोस्वामी। जब देव देव गिरिशः चंद्रमौली, ये प्रश्न हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के 3 नाम को देने की क्या आवश्यकता थी। श्रील जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, देव देव इति सर्वाराध्यो अपि, भगवान शिव सबके आराध्य हैं, देवताओं के भी आराध्य हैं, देव देव इतना महान होते हुए, सबके पूज्य होते हुए भी भगवान के चरण कमल के जल को सिर से धारण करते हैं। अच्छा, गिरिशः अपि गिरौ सेते इति गिरिशः परम अनासक्तो अपि, जीव स्वामी जी अर्थ करते हैं, गिरी में सोते हैं भगवान, भगवान शिव पहाड़ में सोते हैं। पहाड़ में मतलब पत्थर पर, जंगल में जहां तहां, इसका मतलब अनाशक्त, परम अनाशक्त। ऐसा नहीं है कि बस एसी रूम में सोवे भगवान शिव कभी, या बेड पर गद्दा बिछा करके, या सोने के घर में सोवे, तो पहाड़ में सोते हैं। गिरी स गिरव सेते इति गिरी स, जो गिरी में पहाड़ में सोवे उनको गिरीश कहते हैं। तो परम अनाशक्त, ऐसे अनाशक्त महान पुरुष भी भगवान के चरण कमल के जल को सिर पर धारण करते रहते हैं। उसमें आसक्त, गंगा जी को धारण करने में परम आसक्त, ऐसे सांसारिक भोगों के विषय में अनाशक्त। चंद्रमौली, चंद्रमौली का अर्थ करते हैं स्वभावतः एवं अमृत सार सिक्त तनुरपि। अमृत सार, चंद्रमा से अमृत का स्राव होता है, तो भगवान शिव का जो शरीर है अमृत सार सिक्त है, अमृत के सार से सिक्त रहता है। अमृत स्राव जिनके शरीर पर होता रहता है वे प्रभु अमृत सार सिक्त तनु होते हुए भी गंगा जी के ही जल से अपने को सिक्त रखते हैं। चंद्रमा के ऊपर गंगा जी हैं, चंद्रमा ललाट में रहते हैं, यहां पर रहते हैं, और गंगा जी ऊपर जटा रहे हैं, तो चंद्रमा के ऊपर भी गंगा जी को धारण करते हैं। यह भक्ति भगवान की, भगवान शिव समस्त देवताओं के आराध्य हैं, परम अनाशक्त हैं, अमृत सार से सिक्त उनका शरीर है, और ऐसे प्रभु गंगा जी को बड़े प्रेम से परयाच भक्त्या, परा भक्ति के साथ, परम श्रद्धा के साथ अपने स्वामी श्री विष्णु के चरण कमल के जल को धारण करते, परयाच भक्त मूर्धना धारण करते जटा में, और परम भक्ति के साथ ऐसे जल को बलि महाराज अपने सिर पर धारण। और इसके बाद भगवान का स्वागत कर रहे हैं वाणी से, बलिर्वाच स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किं करवामि ते। हे ब्राह्मण ते स्वागतम, आपका स्वागत है, अर्थात आपका यहां आना बहुत अच्छा हुआ, शुभम आगमनम स्वागतम, आपका आना बहुत अच्छा है। तुभ्यम नमः, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, प्रणाम करके बात कह रहे हैं, पुनः पुनः प्रणाम कर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ते स्वागतम तुभ्यम नमः, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। ब्राह्मण किम करवामते, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपके लिए क्या करूं। सेवा शब्द कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, किम करवाम का अर्थ है आपका क्या प्रिय करूं, कृपया हमें आदेश दीजिए मैं आपका क्या प्रिय करूं। ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात मन्ने त्वार्ज बकुल धर्म, हे आर्ज, हे परम पूज्य, आर्ज का अर्थ है श्रेष्ठ और पूज्य, हे परम पूज्य, मैं तो आपको साक्षात ब्रह्मर्षियों का तप मानता, ब्रह्मर्षियों का साक्षात, तो साक्षात में प्रकट और भी मूर्ति धर्म। ब्रह्मर्षिणाम तप साक्षात मन्ने त्वार्ज बपुर धर्म, ऐसा लगता है कि समस्त ब्रह्मर्षियों का तेज शरीर धारण करके मेरे पास आया हुआ है। बपुर धर्म तेज, शरीर धारी तेज, मतलब अतिशय तेजस्वी, परम तेजस्वी आपका स्वरूप है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप साक्षात तप हैं, शरीर धारी तप, वो भी किसके, ब्रह्मर्षियों के। मेरा अहो भाग्य है कि आप हमारे यज्ञशाला में हमारे घर आए, बहुत बड़ा भाग्य है। मैं आपकी क्या सेवा करूं, अद्य न पितर अस्तृप्ता, अद्य न पावितं कुलं,
अद्य शिष्ट क्रतुरयम जद भवान आगत गृह जद भवान मैं गृह आगत आप हमारे घर आए हमारे यज्ञ में आए निश्चित ही मैं पूर्ण विश्वास करता हूं आज हमारे पितर तृप्त हो गए। अद्य में पितरस तृप्त है, पितर अपेक्षा करते हैं अपने संतान से कि वह कोई शुभ काम करे, यज्ञ करे, दान करे, भगवान का भजन करे जिससे उनकी सदगति होती है। यदि वंश में कोई एक व्यक्ति भी शुभ कर्म करता है, खास करके वैष्णवों का ब्राह्मणों का स्वागत करता है और भगवान का भजन करता है तो उसके पितर जो दुर्गति में भी रहते हैं वे तर जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। जब भगवान आगतो गृहान आप हमारे घर आए इस कारण से आज न पितरा पितरह तृप्त न अस्माकम पितरह तृप्त हमारे पितर सब तृप्त हो गए सुखी हो गए। अद्य न पितरस तृप्त अद्य न पावितम कुलम आज हमारा वंश हमारा कुल पावितम परम पवित्र हो गया। अद्य स्विष्ट क्रतुरय मैं मान चुका कि इस यज्ञ में आज ठीक से यजन हुआ है आज पूर्ण ठीक से यजन हुआ है अथवा जब से यज्ञ प्रारंभ हुआ है तो देवताओं की पूजा जिसकी आराधना करनी है ठीक ठीक हुआ है भगवान विष्णु की ठीक ठीक पूजा हुई है इस यज्ञ में। अद्य सुइष्ट क्रतुरय इष्ट का अर्थ पूज्य इस यज्ञ में देवताओं की और भगवान की पूजा ठीक ठीक हुई है इसका लक्षण है कि आप हमारे घर आए हैं। इतनी खुशी बलि महाराज को हो रही है भगवान के आगमन से आप हमारे घर आए इसलिए हमारे पितर तृप्त हो गए या यज्ञ में देवताओं की पूजा ठीक से हुई और हमारा कुल पवित्र हो गया मैं धन्य हो गया। बलि महाराज के कहने का आशय यह भी है कि आपके केवल आने से ही हमारा सब कुछ धन्य भाग हो गया सब कुछ पूरा हो गया लेकिन मैं अपने को और अधिक सौभाग्यशाली मानूंगा जब आप हमसे कुछ मांगेंगे आपको दे करके मैं धन्याति धन्य होना चाहता हूं। इस तरह से भगवान के आगमन का स्वागत कर रहे हैं। इन सब शब्दों से मनुष्य मात्र को शिक्षा लेनी चाहिए उसे ऐसा काम करना चाहिए कि पितर तृप्त हो संतुष्ट। यह निश्चित है कि यज्ञ करने से दान करने से अतिथि का स्वागत करने से और सबसे बढ़कर के भगवान का नाम लेने से भगवान को प्रणाम करने से वंश पवित्र हो जाता है पितर तृप्त हो जाते हैं और किसी के द्वारा की गई पूजा भी ठीक से सफल मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो आप हमारे घर आए इसलिए ये सब मैं अनुमान कर रहा हूं मान रहा हूं सब कुछ ठीक हुआ है। तो इसके बाद कहते हैं अद्याग्नयो मे सुहृत यथा विधि द्विजात्मजरणावने हतांसो वीरियम च भूरहो तथा पुनीता तनुभि पदैस्तव। हे द्विजात्मज बलि महाराज अपने भाव को छिपा करके बोल रहे हैं इनको पता है कि ये साक्षात भगवान लेकिन अपने भाव का गोपन करते हुए कहते हे द्विजात्मज हे द्विज के पुत्र अर्थात हे कश्यप जी के पुत्र हे द्विजात्मज ते चरणा व नेजनई वार भी आपके चरण पखारने के जल से आपका जो मैंने चरण धोया तो उस चरण धोवन के जल से हतांग घस में मेरा सारा पाप अपराध नष्ट हो गया। वार भी जल से वार भी करें बहुवचन बहुत बार छिड़के थे अपने 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 सिर पर बलि महाराज बार बार पानी डाले थे, कहते हैं कि चरणा व नेज नहीं, और बारंबार चरण भी पखारे थे, एक ही बर्तन में बार बार भगवान के चरणों को धोए थे, इसलिए बहुवचन कहें तो चरण और नेज नहीं वार भी आपके चरण प्रक्षालन के जलों से हत अंगसह हमारा सारा अहम पाप नष्ट हो गया। बलि महाराज में कोई पाप नहीं था, पाप नहीं था, लेकिन एक शिष्टाचार की भाषा है, कहते हमारा सारा पाप नष्ट हो गया। और ऐसे मेरे द्वारा जो यज्ञ हुआ है, अग्नियों में आहुतियां दी गई हैं, तो हे ब्राह्मण, हे द्विजात्मा, हे ब्राह्मण पुत्र, मैं अब जान गया कि हमारे यज्ञ में अग्नियों में ठीक ठीक हवन किया गया था, ठीक ठीक हवन किया गया था। एक दिन आपका चरण धोने को मिला और वह चरण जल मुझे अपने माथे पर रखने को मिला, ये किसका फल है? हमने ठीक ठीक आहुति दिलवाया था अग्नियों को, अग्नि देवता सब तृप्त हैं, और आपके चरणों के चलने से आपके तनु भी पदई, आपके छोटे छोटे पैर हमारे जगमंडप में इधर उधर घूमे, इसका अर्थ है भगवान देखते ही आए थे, चकित होकर के अच्छा विशाल यज्ञ है, ये सजावट ऐसी है, वेदी ऐसी है, ये सब जगह घूम रहे थे इधर उधर। तो इसलिए बलि महाराज कह रहे हैं, कि तनु भी पदई, तनु मतलब छोटे छोटे पदई चरणों से, यह भूल तथा पुनीत, यह भू यज्ञ भूमि परम पावन हो गई है, अथवा हमारे राज्य की भूमि परम पवित्र हो गई, पुनीता पवित्र हो गई। यह भूमि दो ही प्रकार से पवित्र होती है, एक तो भगवान के चरण के स्पर्श से, और दूसरे भगवान के भक्तों के चरण के स्पर्श। वे भगवान का नाम गाते हुए पृथ्वी पर नाचते हैं, चलते हैं, तो यह पृथ्वी अपने को धन्य समझती है, पुलकित होती है, इससे अधिक फसल होती है और पृथ्वी के लोग सुखी रहते हैं। ये शास्त्र कहता है इस पृथ्वी पर पैर दे करके और नाचना गाना भगवान का नाम लेते हुए, यह पृथ्वी को समृद्ध करता है दृश्य। बलि महाराज कह रहे हैं कि आपके छोटे छोटे तनु का सुंदर भी होता है, आपके सुंदर सुंदर चरणों के स्पर्श से यम भू भू रियम यह भू यह पृथ्वी तथा पुनीता, जैसे मैं पवित्र हो गया वैसे ही पृथ्वी पवित्र हुई, ये कहने का अर्थ है। जब मेरे जैसा पापी भी पवित्र हो गया तो माता पृथ्वी के विषय में तो कहना ही क्या है, यह भाव परम पावन हो गए धरती आपके चरणों के स्पर्श। तो बलि महाराज इस तरह से भगवान का स्वागत करके और अब कहते हैं, जद जद वटोवान शशितत प्रतीक्षणे त्वामर्थिनम विप्रसुता न तर्कय। हे विप्रसुत, हे बटो, हे ब्रह्मचारी जी, हे विद्यार्थी जी, बटो जद जद बटो वांछसी, हे ब्रह्मचारी जी, आप जो जो चाहते हैं जद जद वांछसी, जो जो पाने की आपकी इच्छा हो, तत्प्रतिच्छ में प्रति इच्छा मुझसे मांगिए, मैं मत प्रति इच्छा हमसे इच्छा कीजिए, अर्थात हमसे मांगिए, आपको जो जो चाहिए हमसे मांगिए। इस पर मान लीजिए श्री भगवान कहें कि आप कैसे जाने कि हम मांगने आए हैं, तो ये कहते हैं त्वाम अर्थिनम विप्रसुता में तर्क है, हे विप्रसुत, हे ब्राह्मण के पुत्र, त्वाम अर्थिनम अनुतर्क है, मैं ऐसा मानता हूं कि आप कुछ मांगने के लिए आए हैं, अर्थिनम आपको मैं अर्थी समझ रहा हूं, कुछ अर्थ चाहिए आपको, जिसको अर्थ चाहिए वो है अर्थी, तो त्वाम अर्थिनम अनुतर्क है, मैं ऐसा मानता हूं अनुतर्क है, पूरा पूरा अनुमान कर दिया हूं कि आप किसी चीज के अभाव में आए हैं, कुछ मांगने आए हैं, तो आपको मैं अवसर देता हूं, खुल करके आप मांगिए, आप हमारी तरफ विचार कीजिए और खूब मन भर करके मांगिए जो चाहिए आपको, मैं आपको अर्थी मांग रहा हूं कि आप कुछ मांगने आए हैं। इसका कारण क्यों कैसे समझ ले, तो वे कहते हैं विप्रसुत, ब्राह्मण के लड़के हैं तो ब्राह्मण का लड़का कहीं चलता है, चूंकि कोई बिजनेस नहीं करता, कोई काम धंधा नहीं करता, तो वो कभी कभी अपने लिए कपड़ा या भोजन सामग्री मांगता है, उसका विवाह नहीं होता है, गरीब रहता है, तो कभी कभी कन्या की कामना करता है, तो आपको जो भी इच्छा हो मैं पूरा कर दूंगा। गान कांचनम गुणवत्धान मृष्टम तथा न पेयम उतवा विप्र कन्या, आपको भूमि चाहिए, जितनी भी गाम का अर्थ पृथ्वी अर्थात गाम का गौ भी है, आपको गौ चाहिए, गौ मांगिए जितनी भी संख्या में, अथवा भूमि जितने भी परिमाण में मांगिए, जितनी चाहिए भूमि, गुणवत्धाम और कांचनम, आपको अलंकार चाहिए, सोना चाहिए जीविका चलाने के लिए, तो सोना मांगिए, अथवा गुणवत्धाम, अथवा आपको कोई रहने के लिए घर नहीं होगा तो निश्चित ही है ब्राह्मण के पास बेचारे के पास क्या है, तो आपको जो भी धाम घर चाहिए मांगिए, गुणवत् धाम, गुणवत् का अर्थ गुणवान धाम, अच्छा घर जो शीत उष्ण और वर्षा काल में अनुकूल रहे, ऐसा घर, शीत काल में जिसमें गर्मी निकले अपने आप पत्थर में ही, घर पहले के ऐसे बनाए जाते थे कि ये सब बनावटी एसी फेसी नहीं चलाया जाता था, या हीटर जलाना, ऐसा पत्थर ऐसा मसाला ही लगता था कि जाड़ा में गर्म रहता था और गर्मी के दिन में ठंडा रहता था अपने आप, इसको गुणवत् धाम कहो, गुणवान धाम, और वर्षा काल में जिसमें हवा आती रहती थी लेकिन कहीं भी सीलन या चून श्राव नहीं होता था, वर्षा काल में जिस घर में श्राव न हो, कोई सीलन न हो और हवा आए, उसको अच्छा मना, तो ऐसा घर आप मांगिए गुणवत्धाम। और मृष्टम अन्न पेयम, मृष्टम का अर्थ मधुर, अत्यंत मधुर अन्न भोजन अथवा पेय, केवल एक टाइम के लिए नहीं, ऐसा नहीं बलि महाराज करेंगे अभी खा लीजिए और चले जाइए, आपको जीवन भर के लिए मैं सुंदर भोजन की व्यवस्था करूंगा और पेयम पीने के लिए भी, उत्वा विप्र कन्या, और अथवा यदि आपको ब्राह्मण की कन्या चाहिए तो मैं व्यवस्था कर दूंगा, आप विवाह कीजिएगा, आपको जो भी इच्छा हो हमसे मांगिए। ग्रामान समृद्धान, तो इस पर मानो वामन देव ने कहा कि भाई विवाह करूंगा तो बहुत खर्चा बढ़ जाएगा खर्चा बढ़ जाएगा, तो भी कहते हैं ग्रामान समृद्धान, समृद्धान ग्रामान, मैं समृद्ध गांव आपको दे दूंगा, धनी गांव, उर्वर भूमि जहां पर है सब कुछ, और तुरगान गजानवाय, और आपको घोड़े हाथी या रथान रथ चाहिए, हे अर्हतम, हे पूज्यतम, हे योग्यतम, संप्रतीक्ष आप हमसे मांगिए, मैं दे करके ही अपने को सुखी समझ रहा हूं, ऐसा योग्य पात्र हमारे घर आवे और कुछ न मांगे तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, इसलिए आप हम पर कृपा करने के लिए मांगिए। भगवान को देने की इतनी लालसा बलि महाराज को मान रहे थे, आप मांगिए, वस्तुओं का नाम रख रख करके मांगने को कह रहे, श्री भगवान इसी के लिए गए ही थे, उनको भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति वैरोचन वाक्यम धर्म युक्तम सस्वनृतम निशम्य भगवान प्रीत प्रति नंदे दम अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विरोचन पुत्र बलि के ये वचन धर्म युक्त थे और प्रिय तथा यथार्थ थे। जो वचन प्रिय हो और सत्य हो उसको सुनृत कहते हैं, सुनृत सत्य हो बिल्कुल यथार्थ और प्रिय। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलि महाराज बहुत प्रिय वचन बोले और सत्य वचन बोले और धर्म युक्त। एक क्षत्रिय का, एक राजा का सहज धर्म है, कर्तव्य है, वह ब्राह्मण का पोषण करे, ब्रह्मचारियों का पोषण करे। तो धर्म से युक्त वचन और प्रिय तथा सत्य वचन सुन करके भगवान प्रीत, भगवान प्रसन्न प्रसन्न हुए और बलि महाराज के वचनों का अभिनंदन करते हुए इदम अब्रवीत यह वचन बोले, इदम अब्रवीत यह बोले। तो श्री भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने अपने प्रवचन में एक प्रकार से भिक्षुकों को सिखा भी रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को मांगने में दातु स्तुति स्वयं तुष्टि, दाता की प्रशंसा करनी चाहिए और अपनी तुष्टि, अपनी तुष्टि का अर्थ है हम ऐसे ही घूमते घामते आ गए लेकिन आप तो बहुत बड़े दानी हैं, ये हमको कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो, दातु स्तुति स्वयं तुष्टि इत्यादि प्रस्तावोचितम वक्तव्यम इति भिक्षु तो शिक्षा ना भावना। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि भगवान वामन देव सिखा रहे हैं कि दाता की प्रशंसा करनी चाहिए हमेशा और अपनी उत्सुकता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। इस तरह भगवान बोल रहे हैं, बलि महाराज तो अब तक बोले, अब सुनिए वामन भगवान की बात। श्री भगवान वाच, सुंदर भगवान बोले, श्री भगवान अथवा श्री से युक्त लक्ष्मी के पति श्री भगवान बोले। भीख मांगने गए हैं, कौन गए हैं? श्रीपति, श्रीपति भीख मांग रहे हैं। भगवान का भीख भी अद्भुत है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान होकर के क्यों भीख मांगे। प्रभुपाद जी कहते हैं भिखमंगा होकर के भी भगवान ही है ना, भीख मांगने गए तो तीनों लोग मांग कर लाती। ऐसे सुने हो कोई भिखमंगा? भगवान का सब कुछ अद्भुत होता है। पुल बनाए तो समुद्र पर पुल बनाती है, ब्रिज बनाती है। भीख मांगने गए तो तीनों लोग की सारी वस्तु सब कुछ मांग करके लाती, अपने भाई के लिए, इंद्र के लिए, और अपने मां को सुख देने के लिए, माता अदिति के मनोरथ को पूरा करने के लिए। तो श्री भगवान बोल रहे हैं, वचस्तवैत जन देव सुनृतम कुलोचितम धर्म युतम जसस्करम जस्य प्रमाणम भृगव सांपराये पिता मह कुल वृद्ध प्रशांत। हे जनदेव, हे मनुष्यों में देवता, राजा को नरदेव कहते हैं, हे महाराज, तब ये तत् वचः, आपका यह वचन जो हमारे स्वागत में आपने कहा, हमको मांगने के लिए कहा, आपका वचन सत्य और अत्यंत प्रिय है। चार विशेषण भगवान दे रहे हैं बलि महाराज के वचन, सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम और जसस्करम। आहा, कितने महान वचन आप बोल रहे हैं। एक तो अत्यंत प्रिय वचन और दूसरा बिल्कुल सत्य यथार्थ। आप जो वचन बोले हैं कुलोचितम, आपके वंश के लोग ऐसे ही वचन बोलते थे, वंश परंपरा के अनुसार बोले। आप एक महान वंश में जन्म लिए हैं, कश्यप जी के वंश में और माता दीति की संतान परंपरा में आपका जन्म हुआ है, धन्य है। इस तरह से वचन बोले आप, कुलोचितम, कुलोचित वचन, वंश खानदान आदि के अनुसार और धर्मयुक्तम, धर्मयुक्त वचन बोले, अपने धर्म के अनुसार बोले। आपका धर्म है ब्राह्मणों को दान देना, गरीबों को दान देना, सुखी करना, यह आपका धर्म है। धर्म के अनुसार वचन बोले और जशस करो महाराज, ऐसे वचन से आपका जस तीनों जगत में फैलेगा, आपका नाम बढ़ेगा। जस्य प्रमाणम, आपके जीवन में यह बहुत भारी सौभाग्य है कि व्यवहार में, व्यवहारिक जीवन में आपके प्रमाण हैं भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य आदि, कैसे जीना चाहिए, कैसे करना। और सांप्राय परलोक के विषय में, आध्यात्मिक जीवन स्पिरिचुअल लाइफ में आपके प्रमाण हैं आपके पितामह, आपके लिए आप उनको प्रमाण मानते हैं, प्रहलाद महाराज, कुल वृद्ध और प्रशांत। श्री प्रहलाद महाराज परम शांत है, उन्हें भोगों की कोई लालसा नहीं, परिपूर्ण है और आपके कुल में सबसे श्रेष्ठ है, कुल वृद्ध आपके पितामह। तो बलि महाराज अध्यात्म के विषय में प्रहलाद महाराज को गुरु मानते थे, प्रमाण मानते थे, और लोक व्यवहार में भृगुवंशी ब्राह्मणों को, शुक्राचार्य को। भगवान कह रहे आपके लिए बहुत अच्छा प्रमाण है। प्रमाण का अर्थ है जिसके पीछे चलना, जिसको आदर्श मानना। तो लोक व्यवहार में आदर्श है आपके शुक्राचार्य और परमार्थ में आध्यात्मिक जीवन में श्री प्रहलाद महाराज, तब धन्य है। क्यों नहीं आप ऐसे होंगे, इन दोनों ने आपको सिखाया है। अरे प्रहलाद महाराज ने आपको भगवान विष्णु की भक्ति सिखाया है और आपके गुरु शुक्राचार्य ने आपको यज्ञ करने को, दान देने को, ये सब सिखाया है। तो लोक व्यवहार में भी आपके गुरु बड़े प्रवीण हैं, दान देने की बात सिखाए, ब्राह्मणों की सेवा की बात सिखाए और आपने सेवा किया भी है ब्राह्मणों की, और परमार्थ में अपने पितामह श्री प्रहलाद महाराज से आप सीखे। भगवान ये इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा है तभी तो आप इतना सुंदर वचन बोल रहे हैं, कितना सुंदर वचन बोल रहे हैं। न हेतस्मिन कुले कस्मिन निःसत्व कृपण कुमार, महाराज इस कुल में, आपके कुल में कहने का मतलब, इस कुल में कोई भी व्यक्ति आज तक निःसत्व और कृपण नहीं हुआ है। निःसत्व का अर्थ होता है अधीर, जिसमें धैर्य न हो, धैर्य दम न हो जिसमें, उसको हम निःसत्व कहेंगे। बेदम और कृपण कंजूस आपके परिवार में कोई जन्म नहीं लिया, स्कूल में कोई ऐसा हुआ नहीं। प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य नवादाता द्विजाते, तो निःसत्व किसको भगवान कह रहे हैं, निःसत्व का अर्थ होता है प्रत्याख्याता, किसी याचक के मांगने पर जो सीधा कह दे नहीं दूंगा तो उसको निःसत्व कहते। सत्व का अर्थ है साहस, धैर्य, बल। लेकिन ये तस्मिन कुले, आपके इस वंश में, दैत्य कुल में, कोई भी पुमान, कोई भी व्यक्ति बिना दम के नहीं हुआ, ये कह दे कि हम नहीं देंगे। द्विजाते किसी याचक के आने पर और मांगने पर कह दे नहीं दूंगा, इसको निःसत्व कहते हैं। और कृपण किसको कहते हैं? प्रतिश्रुत्य यो न यो अदाता, हां दूंगा ददामी इति कह करके और फिर मुकर जाए। प्रतिश्रुत प्रतिश्रुति दिया, प्रतिज्ञा भी किया, ठीक है आप मांगिए, और बेचारा कोई कुछ मांगा तो कह दे नहीं ये तो ज्यादा हो गया, जो मुकर जाए अपने बात से। ऐसा आपके वंश में कोई नहीं हुआ। जब प्रत्याख्याता जवाब देने वाला ही कोई नहीं हुआ कि नहीं दूंगा, तो फिर देने की प्रतिज्ञा करके और फिर मुकरने वाला कहां से हो सकता। दोनों तरह के बिल्कुल बेकार आदमी आपके वंश में नहीं हुए। नहीं न ददामी ये बोलने वाला, और प्रतिश्रुत्य न ददामी ये बोलने वाला। कोई याचक आता है किसी के पास और समर्थ व्यक्ति है, धनी है, योग्य है, ठीक तरह से भगवान ने धन दिया है, और कोई वास्तव में नीडी पर्सन आ रहा है, उसको आवश्यकता है, और उसमें भी ब्राह्मण वैष्णव, तो उसके आने पर मैंने तो सीधा कह दे नहीं दूंगा, हिसाब बोलता हूं भाई नहीं दूंगा, वो तो मरा हुआ आदमी है, निःसत्व जान ही नहीं है। निःसत्व एकदम जान नहीं, सीधा कह दे नहीं दूंगा, इसका मतलब जान नहीं। अच्छा, और प्रतिश्रुति दिया कि ठीक है भाई मैं इतना तो नहीं दूंगा लेकिन इतना दूंगा, थोड़ा दूंगा, तो ठीक है जितना हो सके उतना दे, लेकिन उतना कह करके भी वो भी न दे तो वो कृपण दीनहीन, अपने ही फेरे में सोचने वाला व्यक्ति, भोगी, उसको कृपण कर। ये दोनों तरह के पुरुष आपके वंश में आज तक नहीं और आगे भी नहीं होंगे। न यतस्मिन कुले कष्ट निसत्व कृपण अपमान, प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत युवा दाता द्विजाते, आपके वंश में नहीं है सर। फिर भगवान आगे कहते न संति तीर्थे जुधिचार्थिनार्थिता परां मुखाये त्वमन अश्विन नृपः। आपके वंश में एक तो पहली बात यह है कि सब लोग राजा हुए, सब नृपा, और आपके वंश में कोई भी राजा तीर्थ में और युद्ध में, तीर्थ का मतलब दान के अवसर में, दानावसरे, और युद्ध युद्ध में, दान के अवसर दान के समय पर, दान का अवसर आने पर, और युद्ध में अर्थी के द्वारा अर्थित होने पर भी कोई क्षत्रिय ललकार रहा हो युद्ध के लिए और कोई ब्राह्मण आया हो मांगने के लिए, अगर कोई ब्राह्मण मांगने के लिए आया, कोई भिक्षुक आया मांगने के लिए, तो इसको तीर्थ कहते हैं। योग्य पात्र के आने पर दान दे देना इसको महातीर्थ माना गया है, इसलिए तीर्थ कहा गया है। तीर्थ में और युद्ध में अर्थिना अर्थिता, अर्थी के प्रार्थना करने पर भी कोई क्षत्रिय ललकार रहा हो युद्ध के लिए, उस समय युद्ध न करने वाला, और कोई याचक मांगने आवे खास करके विप्र, और उसको दान न देने वाला परान मुखा अमनस्विन, युद्ध से विमुख होने वाला और अमनस्विनृप न संति जुस्मत कुले, आपके कुल में है ही नहीं, कोई खोज करके हार जाएगा ऐसा कोई नहीं है कि दान का अवसर आने पर दान न दिया हो और युद्ध का अवसर आने पर युद्ध न किया हो। परांगमुख, दान से परांगमुख और अमनस्वी, धैर्यहीन। अरे क्या होगा वास्तव में, देखिए दुनिया में व्यक्ति सोचता है अरे मैं इतना दे दूंगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। सब कुछ करने वाला ईश्वर है, देने वाला ईश्वर है वास्तव में। अगर कोई योग्य पात्र आवे, उचित काम हो आ जाए, जैसे सुनामी आ गया था, कितने लोग बेघर के हो गए थे, विभक्त आज तक है। और मान लीजिए वैसी स्थिति आ जाए, कहीं भूकंप हो जाए, अकाल पड़ जाए, बहुत तबाही मच जाए, खाने के लिए पहनने के लिए किसी को न हो, और अन्य भी कई प्रकार की आवश्यकताएं आती हैं, कोई व्यक्ति मांगता है या परोपकार के लिए, दूसरे के हित के लिए उपकार कर रहा है, विद्यालय खोलना है, अस्पताल बनाना है, या सबसे तो बड़ी बात है भगवान के भक्ति की शिक्षा देने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए, यदि कोई मंदिर बना रहा है, मंदिर की व्यवस्था कर रहा है, तो ऐसे अवसर पर दान न देना ये किस कारण से होता है? व्यक्ति अमनस्वी होता है। अमनस्वी होने से पराजित हो जाता है। अमनस्वी का मतलब है इसमें धैर्य नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं होता है। तो भगवान सब कुछ चलाते हैं, तो भगवान स्वयं प्रवचन कर रहे हैं कि आपके वंश में जुस्मत कुल के बाद में आपके कुल में कोई भी राजा ऐसा नहीं है न संति जो युद्ध का अवसर आने पर और तीर्थ के समय दान का अवसर आने पर न दान दे, परान्मुख हो जाए, विमुख हो जाए। अरे महाराज मैं क्या प्रशंसा आपकी करूं, और सब छोड़ दीजिए राजा आपके कुल में, अरे आपके वंश में प्रहलाद महाराज हुए, जुस्मत कुले जस्सा मले न प्रहलाद उद्भाति जथोरी पाखे, जैसे आकाश में चंद्रमा चमकते हैं नक्षत्रों के बीच में, ऐसे प्रहलाद महाराज आपके वंश में चमकते हैं, और राजा नक्षत्र की तरह हैं, तारा की तरह हैं प्रहलाद महाराज, तारों के बीच जैसे चंदा, क्या धन्य है आपका कुल। भगवान खुल करके अपने भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। जुस्मत कुले जब जस्सा मले न, अपने अमल जस से, अपनी निर्मल कीर्ति से प्रहलाद महाराज आपके कुल में वैसे ही चमकते हैं जैसे आकाश में ताराओं के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। धन्य है आपका वंश। यह कोई मिथ्या प्रशंसा नहीं है भगवान के मुख से, सत्य प्रशंसा है। और आगे कहते हैं जतो जात हिरण्याक्ष, अरे जिस वंश में हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ और हाथ में गदा लेकर के अपने जोड़ी का वीर खोजता चलता था इस पृथ्वी पर अकेले, कोई सेना लेकर के नहीं, कोई उसके सामने नहीं आया, उसके सामने कोई नहीं आया, वरुण महाराज तो हाथ जोड़ दिए कि इस समय हम युद्ध से विरत हो गए हैं, अब हम संन्यास ही ले लिए हैं, इसलिए हम युद्ध नहीं करें, कोई नहीं आया। किसी तरह से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए विष्णु भगवान आए, और आए तो ऐसी भिड़ंत हुई हिरण्याक्ष के साथ, किसी तरह से बाय चांस विष्णु भगवान जीत गए किसी तरह से जीत लिए, उसको मार दिए, लेकिन आज भी जब उसके पराक्रम की याद आती है भगवान को, तो वे अपने को न जैनम मैंने, अपने को विजयी नहीं मानते, विजयी हिरण्याक्ष को ही मानते हैं। यह कहने मतलब अपने को जय नहीं मान। यम विनिर्जित कृष्ण विष्णु क्षमोद्धार आगतम आत्मानम जैनम मैंने तद वीरजम भूरि अनुस्मरण। भगवान विष्णु को, ये विष्णु भगवान ही बोल रहे हैं, भगवान विष्णु को जब जब हिरण्याक्ष के युद्ध की कला याद आती है, उसके पराक्रम की याद आती है, तो अपने को विजयी नहीं मानते, मतलब हारा हुआ मानते हैं। भगवान तो भक्त से हारे हुए हैं ही, तब ये तो हिरण्याक्ष की कथा है, आपके वंश में एक से एक हुए। और निशम्य तद बधम भ्राता हिरण्य कश्यपुः पुरा हन्तुम् भ्रातृहणम् क्रुद्धो जगाम निलयम् हरे। और उसका भाई हिरण्यकश्यपु जब यह सुना कि विष्णु भगवान उसके भाई का वध करते हिरण्याक्ष का, तो भ्रातृहणम् हन्तुम् भाई के हत्यारे को मारने के लिए, वध करने के लिए हरे निलयम् जगाम, भगवान के धाम में पहुंच गया, वैकुंठ चला गया। एक तो पहले वहां जाना बहुत कठिन है, पर पहुंच गया और लगा भगवान विष्णु को खोजने। तमायांतम समालोक्य शूल पाणिम कृतांत चिंतया नास काल लगे विष्णु माया विनाम। तो जब भगवान विष्णु ने देखा कि जैसे प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, उस तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, चिंतया मास, भगवान चिंता में पड़ गए। यहां चिंता का अर्थ विचार कर रहे, चिंता वास्तविक अर्थ यह नहीं है। तो चिंता में पड़ गए, जबकि ये महाशक्तिशालियों में सबसे श्रेष्ठ है, मायावियों में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन वे भी हिरण्यकश्यपु जब पीछा किया तो चिंता में पड़ गए। सोचे कि जतो जतो हम तत्रासु मृत्यु प्राण भृता निवार अतो हमस्य हृदय प्रवेक्ष्यामि परां देशो। भगवान ने सोचा ये तो मैं जहां जहां भागूंगा, जहां जहां जाऊंगा, वैसे मेरे पीछे पड़ा रहेगा, जैसे प्राण भृता शरीरधारियों के पीछे मृत्यु पड़ा रहता है। ये भगवान बोल रहे हैं, प्रत्येक आदमी की मृत्यु जरूर होगी। भगवान एक दृष्टांत दे रहे हैं कि प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, ऐसे मेरे पीछे लगा हुआ है, अतः मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं, क्योंकि पराग दृश्य यह तो बाह्य दृष्टि वाला व्यक्ति है, बाहर देखता है, भीतर हृदय में कभी देखता नहीं है। तो बाह्य दर्शी इस हिरण्यकश्यपु के हृदय में मैं प्रवेश कर जाऊं, बाहर खोजता रहेगा, भीतर देखेगा नहीं, और मैं इस तरह सुरक्षित बचा रहूंगा। भगवान ने सोचा, इति समिष्टित रिपो शरीरम आधारवतो निर्विशे असुरेन्द्र। हे असुरेन्द्र, हे असुर वंश तिलक बलि महाराज, इस प्रकार से निश्चय करके भगवान हिरण्यकश्यपु के शरीर के भीतर प्रवेश कर गए। आधारवतो उनके पीछे वो दौड़ रहा था उनको पकड़ने के लिए, मारने के लिए। तो आधारवत रिपो शरीरम, आक्रमण करते हुए दौड़ कराते हुए शत्रु के शरीर में भगवान घुस गए। कैसे? श्वासा नीलांतर हित सूक्ष्म देह, श्वास अनिल, श्वास अनिल में जो छिप सके, इतना सूक्ष्म देह वाले भगवान विष्णु हो गए। श्वास श्वास अनिल, श्वास वायु में अंतरहित सूक्ष्म देह, इतना अपने को छोटा बना करके हवा के समान, और तत्प्राण रंध्रण विवेश विभिन्न चेता। तो भगवान विष्णु उस समय कांप रहे थे, उनका चित कांप रहा था, थरथर कांप रहा था। इसका अर्थ ये, असली अर्थ यह है कि विघ्न चेता, विघ्न का अर्थ भय, विमने विगत, भगवान में कोई भय नहीं था, वास्तविक अर्थ नहीं, अकंपित चित्त उसके हृदय में प्रवेश कर गए। स्वप्नी तन्निकेतम परिमृश शून्यम अपश्यमान कुपितो ननाद, और खोजा वैकुंठ का कोना कोना, इधर उधर चप्पे चप्पे खोजा, अपने हृदय कभी नहीं खोजा। तो वैकुंठ में ढूंढने लगा, तो कहीं भी भगवान उसको मिले नहीं, हृदय में समा गए थे, कहीं नहीं मिले। तो शून्यम कुपितर ननाद, ये अर्थ लगेगा, बेकार दहाड़ रहा था, ननाद गरज रहा था, कहां गया विष्णु, कहां गया मेरे भाई को मारने वाला। शून्यम अपस मन, ये नहीं अर्थ करना चाहिए कि वैकुंठ को शून्य देखा, वैकुंठ में उनको कहीं नहीं देखा, और सब देखा, शून्य नहीं है वैकुंठ, वह भगवान के परिकर हैं, पक्षी हैं, नदी है, सब कुछ है, चिन्मय है। शून्यम ननाद शिलबीर राघव आचार्य के हाथ कहते हैं, ये यहां अर्थ लगेगा शून्य। शून्यम ननाद मतलब बिना मतलब के बेकार दहाड़ रहा था, शून्य कोई फायदा नहीं। वैकुंठ में भगवान को न देकर के दहाड़ रहा था, कहा हो आ जाओ, शायद वो सोचता था कि गाली दूंगा तो आ जाएगा, इसको सहन नहीं होगा लड़ने के लिए आ जाएगा। खूब गाली दे रहा था, निर्दय, मेरे भाई का हत्यार है, तुमको ब्राह्मणों ने वैष्णवों ने खिला पिलाकर बहुत पोसा है, तुम्हें खून बना है ना, इस त्रिशूल से तुम्हारा गला काट करके और अपने भाई का तर्पण उसी खून से करूंगा, तुम आ जाओ मेरे सामने। इतना क्रोध में हिरण्य कश्यप था, खोजने लगा वैकुंठ से, फिर भागा, क्षमान पृथ्वी पर फिर खोजा, ध्यान ध्यान का अर्थ है स्वर्ग में, और दिशा दिशाओं में, खम पूरा आकाश मंडल में, विवरण अतल वितल सुतल आदि विवरों में, समुद्रों में, विष्णु विचिन्वन न ददर्श वीर, वो विष्णु को खोज रहा था। कितना चित्त में भगवान बसे, सब जगह विष्णु को खोज रहा था, विष्णु मैंने चतुर्भुज धारी चक्रधारी भगवान, उनको खोज रहा था। इतना तो कोई वैष्णव भी नहीं ध्यान करता होगा, रात दिन इधर खोजो इधर खोजो इधर खोजो। आजकल के मूर्ख लोग निराकार को खोज रहे हैं, तो क्या खोजेंगे? देखिए खोजने कहते हैं खोजो, ध्यान करो, ये करो, हिरण्यकश्यप जैसा खोजना चाहिए। ये इस वास्तव में इसकी खोज बहुत सुंदर है। विष्णु विचिन्वन न ददर्श वीर, भगवान का है वह वीर सर्वव्यापक विष्णु को खोज रहा था लेकिन नहीं देखा। उस तरह से उसको भगवान नहीं मिले, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के घर टीवी देख करके आवे और टीवी में किसी व्यक्ति के रूप को देखे और सोचे कि अच्छा ये सब जगह यहां, और बिना टीवी के ही बिना टेलीविजन के और लगे उस रूप को देखने की कोशिश करने, वो डंटा से अपने घर को पीटे, गाली दे, वो जो दिखाई दे रहा था यहां क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये नहीं, टेलीविजन के बिना कैसे देख पाओगे? कुछ ही ने सिद्धांत बना दिया, वो ईश्वर विष्णु निराकार है, उसको देखा ही नहीं जा सकता, केवल ध्यान किया जा सकता है। ध्यान भी क्या कोई करेगा, निराकार का क्या ध्यान होता है, निराकार का क्या ध्यान होगा? तो वह खोज रहा था विष्णु को, न ददर्श वीर, वह वीर भगवान भी फिर भी प्रशंसा करते हैं, वह वीर तक खोजा, मेहनत बहुत किया, अब सातों पाताल में खोजना, समुद्र में खोजना, स्वर्ग में, आकाश में, पृथ्वी पर, कंदरा में, सब जगह। किस लिए खो रहा था? भगवान को मारने के लिए, लेकिन खोजने का जो उसका उत्साह था, उसे प्रसन्न होकर भगवान कह रहे वीर, भगवान तो उसके हृदय में ही बैठ कर सब देख रहे थे, कहा खोज रहा है, क्या बोल रहा है, तो बड़बड़ा रहा है, गाली दे रहा है। तो हम लोगों को तो ऐसे गाली नहीं देना है, लेकिन भगवान का नाम जपते हुए खोजना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। खोजने का मतलब है उन पर अपनी चित्तवृत्ति देना, खोजना क्या हो तो मंदिर में ऑलरेडी विराजे हुए हैं, खोजना क्या, देखना, दर्शन करना है, वैष्णवों को दर्शन करना होता है, खोजना नहीं। खोजना तो मूर्खों के लिए छोड़ दिया था, खोजो जानते ही नहीं भगवान को, खोजोगे क्या? भगवान को कोई जानेगा तब ना अन्वेषण करेगा। अपश्य नीति हो वाचा मया निष्ट मिदम जगत, हिरण्यकश्यप को कहीं भी जब भगवान नहीं मिले तब वह बोला मया अन्विष्टम इदम जगत, मया इदम जगत अन्वेषितम, मैंने सारा संसार खोज डाला लेकिन मेरे भाई का हत्यारा भ्रातृहा नहीं मिल रहा है, तो निश्चित ही वहां चला गया जहां जाने के बाद फिर कोई लौटता नहीं। ये सिद्धांत जो मुख से निकल रहा है। ऐसे उसके कहने का मतलब ये था कि वो मर गया, मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता है। इतने लोग संसार में मरे लेकिन कोई जीवित फिर आया है, वो इतना ही अर्थ कर। लेकिन सरस्वती जी उसके जीव पर बैठी है, भ्रातृहार में गतो नूनम, निश्चित मेरा भाई का हत्यारा वहां चला गया। जतो न वर्तते पुमान, जत जहां से पुमान जीव न आवर्तते, फिर लौटता नहीं है। जहां से जीव इधर नहीं आता है वहां चला गया, तो बैकुंठ में ही है। सरस्वती जी अर्थ करे वो भगवान अपने ध्यान में ही है, अपनी सत्ता में स्थित। तब फिर वो वैर भाव छोड़ दिया, भगवान के साथ इतना वैर बांधा था तो वैर भाव छोड़ दिया। तो इस पर मानो बलि महाराज प्रश्न कर सकते हैं कि वैर भाव कैसे छोड़ दिया, मृत्यु पर्यंत अखंड वैर होता है, वो वैर भाव कैसे छोड़ दिया। तो भगवान प्रशंसा करें, कहते हैं कि वैरानुबंध एतावान अमृतो रिह देहिना। प्राणियों में, देहधारियों में देखा जाता है कि कोई मर गया तो मरने पर अब क्या वैर करना है, आ मृत्यु, मृत्यु पर्यंत ही वैर रहता है। तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि जब विष्णु खत्म हो गया तो अब उसके साथ क्या वैर करना है, अब क्रोध और त्यागना चाहिए। अज्ञान प्रभो मन, ये जो क्रोध होता है अज्ञान से उत्पन्न होता है और देह को मैं मानने से, अहंकार से इसकी वृद्धि होती है। देखिए इसका ज्ञान, अज्ञान से क्रोध होता है और देहात्म बुद्धि से क्रोध की वृद्धि होती है। इसलिए ये सोच करके कि मैं तो अज्ञानी हूं, नहीं मैं ज्ञानी हूं, विष्णु गलती किया, मेरे भाई की हत्या किया, लेकिन जब स्वयं ही बेचारा समाप्त हो गया तो अब क्या वैर करना है, इसलिए वैर छोड़ दिया। तो भगवान विष्णु उसका बौध किए, ये सब कहने की है कोई जरूरत थी नहीं। चाहे प्रहलाद को मारना चाहता था, ये डार्क साइड भगवान नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि वहां उसके कुल की प्रशंसा करनी है, बलि महाराज के वंश की प्रशंसा करनी है। ऐसे भगवान की बातों का बहुत अर्थ अच्छा है। अब कहते ये तो आपके प्रपितामह लोगों का मैं पराक्रम बताया, और आपके पितामह, पितामह की चर्चा कर दिया प्रहलाद महाराज, और प्रपितामह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, और आपके खास पिता की बात कह रहा हूं। पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद विद्वान द्विज वत्सल सोमायुर द्विज लिंगेभ्यो देवेभ्यो दात स याचिका। आपके पिताजी इतनी बड़े ब्राह्मणों के भक्त थे कि देवता लोग ब्राह्मण के वेश में आकर के उनसे उनकी आयु का दान मांगे, और जानते हुए भी कि ये लोग देवता हैं, फिर भी ब्राह्मण का वेश बना करके आए थे, तो उन्होंने अपनी आयु को दे दिया। तो आपके प्रपितामह इतने बुलंद, आपके पितामह का तो कहना ही क्या है, आपके पिता इतने दानी, और उसके बाद आप भवान आचरितान धर्मान आस्थितो गृह में द्वि ब्राह्मण पूर्वजय सूरय अन्य दान के। और बड़े बड़े मनस्वियों ने, ब्राह्मणों ने, शुक्राचार्य आदि ने, और आपके पूर्वजों ने जिस धर्म का आचरण किया है उसी धर्म में आप स्थित हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी कीर्ति है तो आपकी भी बहुत कीर्ति है। अतः आप इतने बड़े वंश में जन्म लिए हैं, बहुत बड़े दानियों के खानदान में हैं, अतः आपकी इज्जत के लिए आपके पास जरूर मांगना चाहिए। तस्मा तो महीम ईसद ब्रणिहम वरदर्शभा। मैं जानता हूं कि आप वर देने वालों में, दान देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, अतः मैं आपसे ईसत महीम थोड़ी सी जमीन मांगना चाहता हूं। थोड़ी सी भूमि चाहता। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि मानो भगवान ने ये कहा कि मैं भूमिहीन हूं, तो एक पर्णशाला बनाने के लिए, एक कुटीर घास की झोपड़ी बनाने के लिए उनको एक थोड़ी सी जमीन दे दीजिए, थोड़ी सी जमीन कह ईशत में थोड़ी कियती कियती भूमि, कितनी भूमि, पदानी त्रीणि दैतेन्द्र, हे दैतेन्द्र तीन पद परमिता भूमि, तीन पद में जितनी भूमि नापी जाती है उतनी भूमि चाहिए। अच्छा, किसके पैर से तीन पैर, सम्मितानि पदा मम, मेरे पैर से मुझको तीन पग भूमि चाहिए। अगर तीन पग भूमि में भगवान सारा भूमंडल नाप लिए तो ये झूठ नहीं था, क्योंकि भगवान ने कोई पैर दूसरा नहीं लगाया था, उनका वही पैर बढ़ा था। तो मम पदा, मेरे पैर से तीन पग भूमि हमको दे दीजिए। नन्नते कामे राजन बदान्य जगदीश्वरा, मैं जानता हूं कि आप दान देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, आप इस समय जगत के ईश्वर हैं, फिर भी मैं आपसे अन्यतम कामे, मैं अन्य कुछ नहीं चाहता हूं। इस पर स्वयं ही कह रहे कि यदि आप कहें कि राज धन लेना भी एक अपराध है, दोष है, तो यहां दोष नहीं है, क्योंकि नैन प्राप्त में तुय विद्वान जावदर्थ प्रतिग्रह, जितना जरूरत हो उतनी चीज ले लेना, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। न ये न प्राप्त, ज्यादा लेने वाला दोष का भागी बनता है, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तीन पग भूमि चाहिए। अथवा जावत अर्थ परिग्रह का अर्थ है कि जावंत ते अर्थ तावत परिग्रह, जितना धन आपका है उन सबको ले लेने से मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, ये अर्थ है। जितना जरूरत है उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, उतना जरूरत भर लेने से पाप नहीं लगता है, अतः आप मुझे दान दें। तब बलि महाराज, अरे बाप, इतना मुझे बेवकूफ लड़का है, मेरे पास आकर के तीन पग भूमि मांग रहा है। तो कल बलि महाराज का प्रवचन होगा बामन भगवान के साथ, और बामन भगवान फिर बोलेंगे हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद, बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण।